ओम शांति। नमस्कार। आपके आगमन का ये तीसरा दिन और तीन दिनों में से दो बड़े सेशंस को छोड़कर दो प्लेनरी सेशंस भी समाप्त हुए। आज हम तीसरे पायदान पर खड़े हैं और इस पायदान पर जब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और जिसका टाइटल आप पीछे देख सकते हैं, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, इसके लिए हमारे बीच में महानुभाव जो उपस्थित हैं, जो अपने विचार पेश करने जा रहे हैं, उनको मैं मंच पर निमंत्रित करता हूं। हम सब तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी छायाबेन, जो कोर ग्रुप मेंबर हैं स्पार्क के, ब्रह्मा कुमारी स्नेहाबेन बेंगलोर से ही हैं, वो भी कोर ग्रुप मेंबर हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, उनका भी मैं मंच पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, डायरेक्टर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। डॉक्टर आभा सिंह जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहूंगा, वे प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस, डायरेक्टर IIIM सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस दिल्ली। उनको भी मंच पर उपस्थित होने के लिए निवेदन करता हूं। प्लीज कम फॉरवर्ड। आप सबको याद होगा, शायद सिस्टम में एम्बेड भी हो गया होगा कि हर सेशन के अंत में हम गाइडेड मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। उसके लिए मैं आदरणीय दुर्गेश बहन जी को निमंत्रण देता हूं, वे सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क के भुवनेश्वर से। आपके सामने मैं विनय पंड्या उपस्थित हूं। हमारे मेहमान जतेंद्र सिंह जी, आभा सिंह जी अगर हॉल में उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आए। अभी वे पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी साउंड टीम से निवेदन करता हूं, वे प्रभु स्मृति के लिए हमें एक सुंदर सा गीत सुनाएं और हम उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु स्मृति।
चले प्यार प्रभु का लुचाते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले।
हो जाएगा स्नेह स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
निर्मल की मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले।
ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में चलने लगेंगे जीवन सभी के संवरने।
आदरणीय डॉक्टर आभा सिंह जी से निवेदन है वे मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें जी। भवन में सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों से निवेदन है थोड़ा आगे आए और नजदीक का स्थान ग्रहण करें। इससे वक्ता और श्रोता के बीच में एक सुंदर सा संबंध स्थापित होता है। दूरी की दीवार हम दूर करें। आदरणीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी उपस्थित हों तो कृपया मंच पर पधारें प्लीज। वे भी आ चुके हैं। अब मैं हमारी बहनों से निवेदन करता हूं कि वे मंचस्थ मेहमानों का पुष्प गुच्छ और बैज से अभिवादन करें स्वागत करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहने आदरणीय डॉक्टर आभा सिंह आदरणीय जतेंद्र जी हम लोग तालियों में कंजूसी न रखें। आदरणीय छाया बहन आदरणीय स्नेहा बहन और आदरणीय दुर्गेश बहन कहते हैं संसार पांच तत्वों से बना है और उन पांच तत्वों के प्रतिनिधि आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। और को क्रिएशन की जब बात होती है तो हिंदी में भी बोलते हैं कि पंच जहां होता है वहां परमेश्वर होता है। इस छोटी सी विधि के पश्चात मैं निमंत्रण देना चाहूंगा आदरणीय छाया बहन को। छोटा सा परिचय है। ईश्वरीय ज्ञान का प्रथम परिचय इन्हें 30 वर्ष पहले हुआ और तभी से ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांतों का और उनकी प्रविधियों का वो अभ्यास कर रही हैं। वर्तमान समय में विश्व परिवर्तन व ईश्वरी सेवा के अभियान में पूर्णतः समर्पित जीवन जी रही हैं। आपने वाणिज्य में स्नातक समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर अने बीए एमए तथा मूल्य शिक्षा में एमएससी का अध्ययन किया है। सहस्राब्दी वर्ष जिसे हम मिलेनियम ईयर कहते हैं तब से अर्थात सन 2000 से आपने तालीम और आध्यात्मिक विकास के अनेकानेक कार्यक्रमों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। व्याख्यान दिए हैं सम्मेलन आयोजित किए हैं कार्यशालाओं का संचालन किया है। आपकी इन सेवाओं का लाभ विश्व स्तरीय और भारत के लेवल पर भी बड़ी संस्थाएं BUML अमूल BHEL जिसे भेल कहते हैं BEL बेल LNT सत्यम पीयरलेस आदि ने इनका लाभ लिया है। खिलाड़ियों अस्पतालों, बैंक, अध्यापकों, युवाओं तथा बच्चों के लिए मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम किए हैं और चार भाषाएं जानती हैं, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु। और आपकी विशेषता रही है कि योग की गहराई में जाकर लोगों को अनुभूति करवाना, ऐसी हमारी ब्रह्मा कुमारी छाया बहन को मैं निमंत्रण देता हूं। वे अपने आज के इस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट के विषय पर अपने विचार आपके बीच में प्रस्तुत करें। आदरणीय छाया बहन।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम मनसाक्षी अपने गेस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, तो विनय भाई का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये एक संस्कृति है कि जो भी मनसाक्षी है तो उनका परिचय देना, उनका स्वागत करना एक कल्चर है, राइट। तो ऐसे इस भगवान के घर में भी सुंदर से भगवान के स्थान पर भी हर एक का परिचय दे करके तो उनका निमंत्रण देना ये बहुत बड़ा कल्चर है, रेस्पेक्ट भी है, हम समझते। लेकिन हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में न सिर्फ परिचय दिया जाता है, लेकिन परिचय के साथ साथ भाई बहनों का इतना रूहानी प्यार भी होता है, तो जिस कारण हम जहाँ से भी आए हों, जिस क्षेत्र से, जिस स्थान से आए हों, लेकिन उस रूहानियत के कारण हम सब उस रूहानी प्यार में बंधे जाते, तो वी आर बाउंड बाय दैट लव। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो बेसिक फाउंडेशन है, तो कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट जहाँ से शुरू होती है, वो सिर्फ शब्दों, वाणी से नहीं है, तो उससे और ही गहराई में हम जाएंगे, इन डेप्थ हम जाएंगे। तो रेस्पेक्ट कहाँ से शुरू होता है? सो एक व्यक्ति, हम बोलते यहाँ से आए हैं, उनका पद ये है, उनके पास इतने संपत्ति है, लेकिन राज्य का मेडिटेशन में हमने सीखा कि रेस्पेक्ट कहाँ से शुरू होता है, वो कल्चर कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि संस्कृति कैसे बनती है। तो हम बोलते हैं स्थूल रूप से कि ये हमारी संस्कृति है, आए हुए मेहमानों का पैर छूना, तो उनका आदर करना, बहुत अच्छी तरह से उनकी पालना करना, ये हमारी संस्कृति है। ऐसे हम अनेक संस्कृति या कल्चर के बारे में बात करते हैं, लेकिन संस्कृति कहाँ से शुरू होती है, कल्चर कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? क्योंकि कोई भी एक बात हम लेंगे, तो कोई भी एक विचार हम लेंगे, तो उस विचार से हम बहुतों को बाइंड कर देते हैं कि आप ऐसे चलो, ऐसे रहो, ऐसे बात करो, तो ये नियम है, ये मर्यादा है, तो हम अनेकों को बाइंड करते हैं। और हाँ, जब ये सर्कल बढ़ता जाता है तो हम कहते हैं ये हमारी समाज की संस्कृति है, तो ये हमारी देश की संस्कृति है, तो ये हमारी कुल की संस्कृति है। लेकिन हमने पाया कि ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो जब हम कल्चर या रेस्पेक्ट कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, तो वो सिर्फ ये स्थूल बातों से सीमित नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म रीति से हमें भगवान ज्ञान देते हैं, और ये संस्कृति, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट जो है, तो हमारे अंदर लाते हैं, ताकि ये कल्चर जो है आने वाले युग में ये हमारी दुनिया बन जाए, तो ये हमारा संस्कार बन जाए। तो क्योंकि आने वाले युग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ सब कुछ इतना अच्छा हो, ऑर्डर हो, तो सब कुछ ऑर्डरली स्टेट में हो, तो वो वैल्यूज हो सकते हैं, तो वो समाज में सिस्टम हो सकता है, सब ऑर्डर में है। तो ऐसे ही हम जब हम आने वाले युग के आह्वान कर रहे हैं और उसमें जाने का कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, या हम पैराडाइज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, तो पहले हमारे मन में ये संकल्प आता है कि वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके अंदर राजा हो प्रजा हो कोई भी हो सब्जेक्ट हो, तो हर एक के प्रति राजा के मन में इतना रेस्पेक्ट है, गौरव है, सम्मान है, तो वो कौन सा युग हो सकता है। तो जिसका जो हम एक्सट्रीम अभी हम देखते हैं कि रेस्पेक्ट सिखाया जाता है, रेस्पेक्ट को सीखना पड़ता है, लेकिन रेस्पेक्ट सम्मान देना नेचुरल था वहां पर। तो ये हमारे इतिहास है भारत की, 5000 वर्ष पहले की इतिहास है, जहां पर हमारी संस्कृति नेचुरल थी कि हर एक को हम रेस्पेक्ट दें। तो हम सोच रहे थे कि ये कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट सतयुग से गोल्डन एज से कैसे शुरू हुआ, तो वहां पर क्या था। तो हर एक राजा, विश्व महाराजा हो या वहां पर प्रजा हो या कोई भी हो, लेकिन हर एक के पास पावर्स है, हर एक का पद अलग है, फिर भी सतयुग या वैकुंठ में डिफरेंस अंतर नहीं पाते हैं कि ये हमसे कम पद है, ये हमसे छोटे है, ये हमसे कम संपत्तिवान है, ये हमसे कम साहूकार है, तो इनका इतना ही है, तो ये अंतर हम नहीं पाते हैं। तो हालांकि हर एक के हर एक व्यक्ति में वो पावर्स है, फिर भी एक फैमिली जैसे हम रहते हैं, तो फैमिली बढ़ता ही है, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट बढ़ता ही है जब हमारे अंदर वो नेचुरल सोल कॉन्शियस हो। तो क्यों सोल के अंदर वो रेस्पेक्ट, वो भावना, वो शुभ सोचना, अच्छा सोचना, सकारात्मक सोचना, श्रेष्ठ सोचना किसी के प्रति, तो ये सब सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस में ही होता है। क्योंकि जब हम ये सोल कॉन्शियस अभ्यास आत्मिक दृष्टि से थोड़ा नीचे उतर जाते तो हम फंस जाते कि ये है, ये है, ये हमसे कम पद वाले हैं, हमसे कम संपत्ति रखते हैं, हमसे इतने छोटे हैं। लेकिन सतयुग की जो सुंदर सिस्टम है, इतना सूक्ष्म है, तो वहाँ रेस्पेक्ट और कल्चर जो है इतना नेचुरल है, इतना स्वाभाविक है कि आत्मिक दृष्टि से, रूहानियत से वहाँ सब व्यवहार चलता है, सिस्टम ही इतना सुंदर चलता है। तो जब हम इतना सुंदर कल्चर, इतना सुंदर संस्कृति भारत में देख पाए, तो अभी हम क्यों ये देखते हैं कि ये संस्कृति से थोड़ा हम दूर हट गए, तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है। तो यहीं पर हमें भगवान सिखाते हैं कि वापस उस संस्कृति को लाने का है तो आपके अंदर वो सोल कॉन्शियस विजन भी चाहिए, दृष्टि भी चाहिए और भावना भी बहुत बहुत चाहिए। और इसी कारण जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो हमारा कल्चर संस्कृति ही बदल गई। तो हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति सुंदर है तो रेस्पेक्ट देते, अगर व्यक्ति बहुत ही अच्छे पद में है तो हम रेस्पेक्ट देते हैं। एक्चुअली कल्चर संस्कृति है एक बहुत सुंदर धारणा, ये बहुत सूक्ष्म है। तो जब हम बहुतों को इस संस्कृति के अंदर, कल्चर के अंदर बाइंड कर रहे हैं, तो ये सूक्ष्म प्रेरणा हम दे रहे हैं कि आप भी ये हो, आप ही ये हो, आप ही ये सोल हो, आप एक आत्मा हो, और आत्मा के अंदर ये बहुत श्रेष्ठ सुंदर और सकारात्मक गुण है। तो इसी विजन से हम जब हम चलते हैं तो वो कल्चर, वो संस्कृति नेचुरल बन जाती है। तो हालांकि ये संस्कृति बदलते बदलते, धारणाएं बदलते बदलते, हम देखते हैं कि जब बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो इतना अंतर पाए, इतना डिफरेंस हमने पाया कि हमारा कल्चर ही अलग हो गया। उस नेचुरलिटी से, ओरिजिनल से हम बहुत दूर हट गए। तो इसीलिए हम जब हम देखते हैं कि रेस्पेक्ट, जैसे हम दुनिया में भी सुनते हैं और वर्णन भी कहते हैं, करते हैं कि रेस्पेक्ट हैज टू बी वन। तो रेस्पेक्ट पूछ करके, मांग करके नहीं लेने का है, लेकिन रेस्पेक्ट शुड बी गिवन, रेस्पेक्ट वो नेचुरल हमको मिले, तो नेचुरल मिले और नेचुरल हम रेस्पेक्ट भी थे। तो ये कब हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग इतने प्रोफेशंस हैं, इतने कल्चर है, इतनी कुल है, भाषाएं अलग अलग है, लेकिन राजयोग का जो मूल फाउंडेशन या ज्ञान हम जो कहते हैं, तो हमें क्या सिखाता है कि आत्मा जब शरीर से पार्ट बजा रहा है तो रोल प्ले कर रहे हैं, तो हर एक का रोल इतना सुंदर, इतना यूनिक है, तो अलग अलग है, इतना यूनिक है। लेकिन जब हम रोल में फंस जाते कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, उनका रहन सहन ऐसा हो, उनकी बातचीत ऐसे हो वैसे हो, तो क्या हो जाता है, इन्हीं बातों से हम उनके प्रति रेस्पेक्ट जो है, सम्मान जो है, कम करते जाते हैं। तो ऐसे होते होते हम रोल में फंस जाते हैं। हालांकि भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हर एक आत्मा का रोल संस्कार अलग है, सो अप्रिशिएट कीजिए उनके रोल को। हर एक रोल का इतना इम्पोर्टेंस है, हर एक व्यक्ति जहाँ पर है, जिस रोल में है और जिस रोल को प्ले कर रहा है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस को हम जब, तो महत्वपूर्ण रोल को हम जब समझ जाते हैं, तो हम उस आत्मा के प्रति इतना रेस्पेक्ट दे पाते हैं। तो ये हम जब से बचपन से हम ज्ञान में चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इस इंस्टीट्यूशन में हमने यही देखा, इतना यूनिक इंस्टीट्यूशन हमको क्यों लगा। और हर एक आप जो पार्टिसिपेंट डेलीगेट्स हैं, तो आपको भी ये लगता कि जहाँ जाओ, आप जिस डिपार्टमेंट में जाओ, जो भाई बहन यहाँ रहते हैं, समर्पित रूप से उनसे मिले, तो ये लगता है कितना हम इस रेस्पेक्ट देते हैं, और रेस्पेक्ट भी उनको मिलता है। तो एक ईश्वरीय परिवार में भी इतना रेस्पेक्ट, तो डिपार्टमेंट्स अलग है, सेवाएं अलग है, और सेवा जो देते हैं उनका ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि यहाँ ये यूनिकनेस, क्यों रेस्पेक्ट अंदर से आता है, क्यों वो वाइब्रेशंस ऑफ रेस्पेक्ट हर एक के अंदर आता है, कि सेवा अलग होते हुए भी तो हमारे अंदर ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुद्ध भावना है कि हम जो सेवाएं दे रहे हैं, तो सेवा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम जो कर रहे हैं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किसके लिए कर रहे हैं और क्या हम दे रहे हैं, क्या लाभ हम दे रहे हैं, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी आर गिविंग अदर्स। सो जब हम इस मनोभावना से सेवा करते हैं, तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हुए भी हर एक के अंदर वो रेस्पेक्ट आ जाता है, हर एक के अंदर वो रूहानियत तो भर के आता है, तो वो कल्चर बना रहता है। सो यहाँ पर देर इज नो डिफरेंस ऑफ पोस्ट पोजिशन, या यहाँ पर कोई भाषण करने वाले अलग है या कोई और सेवा देने वाले अलग नहीं है। तो ये कल्चर इतना सुंदर इस संस्था में बना है, और इसी कल्चर को हम देखते हैं कि ये कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट को हम और दूसरों को भी ये संदेश पहुंचाए। तो इसीलिए ये कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट जो है, ये रेस्पेक्ट सिर्फ ऊपर रीति से, बाहरी रीति से नहीं है, लेकिन हर आत्मा आत्मा के अंदर की विशेषता को देखते हुए, उनकी यूनिकनेस को देखते हुए, हमारे अंदर जो रेस्पेक्ट आती है, हमारे अंदर वो जो सम्मान की भावना आती है, तो वो भावना को और बढ़ाए और वृद्धि करे। सो ये वृद्धि तब आएगी जब हम आत्मिक दृष्टि में रहेंगे। ये मूल अभ्यास हम रोज, तो हम ये चाहे डिस्कोर्स में मुरली में सुनते हैं, चाहे आप योग शिविर में सुनते होंगे, चाहे आप ऐसे सेशंस में सुनते हैं, क्यों बार बार ओम शांति कहा जाता है, क्यों हमको वापस उस शांति में, तो उस पीस में ले जाए, तो क्यों हमें कहा जाता है कि आप आत्मा हो, यू आर पीस, यू आर ए सोल, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जब इस स्थान पर हैं, तो वो कल्चर बनाए, कल्चर की शुरुआत करें, तो कि आत्मा की दृष्टि से हम रेस्पेक्ट दे, और फिर हम आत्मिक भावना से हर एक को इस भावना से देखे कि हर एक बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक इतना रेस्पेक्टफुल भी है। तो हम इन शब्दों को शेयर करते हुए, तो हम यही कहेंगे, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि जब भी आप ऐसे शब्द ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सुने, ओम शांति सुन सकते हैं या आत्मा सुन सकते हैं या स्वर्ग के वर्णन भी आप सुन सकते हैं। तो हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हो, एक दृढ़ संकल्प जागृत हो कि वो जो संस्कृति थी, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट था भारत में, वापस हम सबको लाना है। सो लानी है तो हम सब की जिम्मेवारी है, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम ये संकल्प लेते हुए इस कल्चर को वापस लाएं और कल्चर को और आगे बढ़ाए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
ओम शांति। आदरणीय छायाबेन का आपके बीच में बहुत अच्छी तरह से उस विषय को रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। संस्कृति की जब बात आती है तो हमें याद करना चाहिए, लगभग 2500 साल पहले महावीर ने एक सिद्धांत प्रस्थापित किया था, और वो था स्यादवाद का। स्यादवाद मने विनोबा उसका अनुभव अनुवाद इस तरीके से करते हैं, अपि सिद्धांत, मैंने जो कहा वही सच है, ऐसा नहीं उसने कहा वो भी सच होता है, हो सकता है। इस अपि सिद्धांत के या स्यादवाद के कारण आप देखिए तो एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू हुआ था। हम रास्ते में कहीं भटक गए, भूल गए। और गीता में भी एक श्लोक आता है, हमारी आभा बहन जो बैठी हैं वो गीता पे भी शोध प्रबंध करवाती हैं, उनके सामने ये चार शब्द रखते हुए मुझे खुशी होती है। भक्ति और भक्त के लक्षण का वर्णन करते हुए वहां लिखा है अनपेक्षो, शुचि, दक्ष, उदासीनो, गतव्यथः। और छठा सिद्धांत है सर्वारंभ परित्यागी। अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं है। शुचि माने स्वच्छ है अंदर से बाहर से। दक्ष है अपने कार्य में वो एक्सेलेंस हासिल किए हुए है। उदासीन है उसका फल मुझे मिलता है, कहीं और जाता है, उससे कोई उसका सरोकारी नहीं है। गतव्यथः, किसी प्रकार के दुख से ग्रस्त नहीं है। और मुझे ये करना है, मुझे ये करवाना है, इस भाव से मुक्त है, उसे जो कराना है वो कराए, ऐसा जो भाव धारण करता है उसे हम गीता के भक्त के रूप में वर्णन करते हैं। इसी में से आप देखेंगे तो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट खड़ा होता है। फूल भी जब खिलता है तो अपने आप को सिर्फ खिलने के लिए खिलता है, प्रसन्नता हमें मिलती है वो उसके लिए बाय प्रोडक्ट होता है। तो अंदर से अपने आप को विकसित करना और ऐसा बनाना जिससे रिस्पेक्ट कहो, रुचि कहो, प्रेम कहो, सब नेचुरल मिलता रहे, इस संस्कृति की बात हमारे यहाँ चल रही है। अब मैं अगली वक्ता हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी स्नेहाबेन को निमंत्रण देता हूं। आपने 33 वर्ष पहले 1986 में ज्ञान प्राप्त किया और 1998 से यानी पिछली सदी के अंतिम चरण में अपना जीवन इस मिशन के लिए समर्पित किया। आपने माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक, मानव संसाधन यानी एचआरएम में अनुस्नातक और मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता में एमएससी की पदवी प्राप्त की है। एचआर के क्षेत्र में अपना समर्पित जीवन बिताने के पहले उन्होंने 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की और पिछले 33 साल से मनुष्य आत्माओं के कल्याण का मार्ग अपनाए हुए हैं। आप राजयोग तालीम और आध्यात्मिक विकास के साथ 2007 से सन से जुड़ी हुई हैं और आपकी सेवाओं का लाभ बामूल, बालमूल, अमूल, भेल, बेल, एलएनटी, सत्यम, पार्ले, मिंत्रा वगैरह ने लिया है। खिलाड़ियों के लिए भी आपने बहुत काम किया है, अस्पताल, बैंक, अध्यापक, युवा, बच्चों आदि के लिए मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। और आप भी कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु भाषा में माहिर हैं। हम उनसे उनके विचार भी सुनेंगे, उनका जीवन का अनुभव भी उनकी बातों से ग्रहण करेंगे। आदरणीय स्नेहाबेन,
शांति। धन्यवाद विनय भाई जी को। जब वो हमारा परिचय पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा था कि लगभग मेरा और चायबेन जी का एक ही टाइम ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो चला। दोनों ही बचपन से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे थे और लगभग सेवा के क्षेत्र में भी हम दोनों एक साथ ही आए। तो जब ये हमें बताया गया कि आप दोनों को एक ही प्लेनरी सेशन में डाला गया है, सेम टॉपिक ऑन द सेम डायस, आई वाज वंडरिंग दिस इज समथिंग प्लेजेंट सरप्राइज, आई वुड से अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो चायबेन जी ने बहुत सुंदर रूप से हमारी जो कल्चर थी पास्ट की, वी हैव अ रिच हेरिटेज ऑफ 5000 ईयर्स एंड वी हैड अ ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट एक फाउंडेशन है, एक सूत्र है हर चीज का। जब हम इस भारत की संस्कृति को देखते हैं, यहाँ पे हर विविधता हमको मिलेगी, चाहे भाषा हो, चाहे आचार विचार हो, धर्म हो, बहुत सुंदर सुंदर विविधताएं यहाँ भारत में मिलती है जो कोई भी देश में किसी भी खंड में नहीं मिलता है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे तो इतनी विविधता नहीं मिलती है। तो भारतवासी होने का एक सौभाग्य है कि हम इस विविधता को महसूस भी कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी खूबियों को जान सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो एक ही जैसे चलने में मजा नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल लव रेनबो, है ना? हमें अच्छा लगता है ना जब भी रेनबो निकलता है, वी गो एंड सी कितनी सुंदर है, कलर्स अलग है लेकिन दिखने में कितनी ब्यूटीफुल है। सो ये बेसिक कल्चर ऑफ फाउंडेशन, जैसे चायबेन जी ने बोला, इस अंडरस्टैंडिंग से आता है कि मैं आत्मा हूं और सभी भी आत्मा है, हर एक अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट क्रीचर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड has its own place and it is worthy, respect comes from this understanding. Without this understanding, respect can't come. Jaise unhone kaha, it's not just about behavioral patterns. Unhone bola hum pair chhute hain, kisi ke aage jhukte hain, hum khade ho jate hain. Dil se us aadmi ke prati hame pyar na bhi ho, रिस्पेक्ट ना भी हो, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई बॉस हमें कुछ कहता है, हमें अच्छा ना भी लगे तो भी व्हाट वी डू, वी अग्री, वी से ओके यस सर। तो रिस्पेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट बिहेवियर। बिहेवियर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार में दिखाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट में देर इज एन इंटीग्रल पार्ट विच इज इन्वॉल्व, विच इज सो important core for showing respect to somebody is that love. Dil se jab hame pyar hota hai us atma ke prati, we understand who are they, what are they, what is their place. When we understand that respect comes naturally, ye sikhaya nahi jata, jaise unhone kaha ye natural tha, aajkal sikhana padta hai. चाहे वो बच्चे और पेरेंट के रिलेशनशिप में हो, बच्चे बोलते हमारी भावनाओं का कदर नहीं, हम जो बोलते हैं वो करते नहीं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमारे नहीं सुनते, या फिर ऑफिस में हो, वी हैव दिस रैट रेस एंड दे से मेरी आइडियाज का कोई कदर नहीं करता है, उनका ही करता है, या फिर पोस्ट और पोजिशन का हो, वी सी दिस डिसइंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट. That has not become a natural part of our life. जब हमें induction किया जाता है, because I come from a HR background, I worked in a hospital sector for 6 years in HR, inducting people. So first when we induct people, the first training we give is hospital का culture क्या है, नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है, what you need to do, what you shouldn't be doing, इन केस ऑफ इमरजेंसी हु इज टू बी अप्रोच्ड. सो अभी ये सिखाना पड़ रहा है कि यू नीड टू बिहेव लाइक दिस. लेकिन इसी भारत में हम बोलते थे कि हमारे जो पूर्वज है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इजंट इट? सो वी यूज्ड टू से. तो वो बहुत काल बीत गए, सेंचुरीज बीत गए, ऐसे भी नहीं कह सकते. इट इज जस्ट अ थॉट अवे. ये संस्कृति हो, ये अंडरस्टैंडिंग हो, इट्स जस्ट आई नीड टू कॉन्टेम्पलेट दैट एंड नीड टू कनेक्ट टू दैट. वो बहुत सदियां बीत गई है, वो तो अभी गतकाल हो गया, अभी ऐसा समय आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है. बिकॉज कल्चर जब हम बोलते हैं, संस्कृति जब हम बोलते हैं, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड. व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज डिमिनिश्ड, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड. जब वो बोल रहे थे कि ये सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस हम चालू करें, यहां से करें, जो इस ब्यूटिफुल कैंपस में हम देख रहे हैं यहां से करें, बट वो प्रैक्टिस करते करते वो हमारी संस्कृति बनेगी. एक दिन में नहीं बनेगी, है ना? इट बिकम्स नेचुरल ओनली बाय प्रैक्टिस. बट प्रैक्टिस शुरुआत करने के लिए भी ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए. बिकॉज व्हेन आई अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन एंड वर्थ ऑफ माय ओन सेल्फ, देन देयर इज नो क्योस, देन देयर आर नो क्लैशेस. क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बेसिकली व्हेन आई एम नॉट अवेयर ऑफ माय सेल्फ. सेल्फ वर्थ जब हम बोलते हैं, जैसे चाय बहन जी बोल रहे थे रिस्पेक्ट के बारे में, इट हैज टू बी अर्नड, इट हैज टू बी वन. गांधी जी बोल रहे थे इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट. बट दिल से रिस्पेक्ट आने के लिए आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, हु एम आई. आई गिव वन सिंपल एग्जाम्पल. कोई बच्चा है, आपका बच्चा है, वो स्कूल से आते हैं, कोई फिजिक्स का कुछ फॉर्मूला या केमिस्ट्री का कुछ सॉल्व कर रहे हैं. मे बी ही इज अ हाई स्कूल किड एंड यू हैव डन अ पीएचडी और यू माइट बी अ साइंटिस्ट. यू नो दैट प्रॉब्लम वेल, यू नो बेटर देन द चाइल्ड. ही इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व इट. आप हेल्प करने जाते हैं. द बच्चा से नहीं नहीं आई नो, माई टीचर हैज टॉट मी लाइक दिस, आई डू इट. आपको बुरा लगेगा? बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों? बच्चा है, बच्चा है, उसके पीछे व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? बच्चा है सो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग उसके पीछे? हाँ, नादान है. ही इज इनोसेंट. ही इज राइट. वो इनोसेंट है, वो नहीं जानता कि मैं क्या जानता हूं, इजंट इट? सो द चाइल्ड इज इनोसेंट, इग्नोरेंट, एंड इट डजंट नो माई वर्थ. बट आई नो माई वर्थ, इजंट इट? यू डोंट फील बैड. सो यू आर रेस्पेक्टिंग द इग्नोरेंस ऑफ द चाइल्ड, यू आर रेस्पेक्टिंग द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, एंड इसलिए वहां क्लैश नहीं होता. आप उसको प्रूव करने की ठान नहीं लेते हैं कि मुझे इस बच्चे को कैसे भी करके अपना वर्थ समझाना है. डू यू डू दैट? इसको नहीं पता मैं कैसे भी करके इसको समझाना ही है कि मैं क्या हूं, मैंने कितनी पढ़ाई की है, व्हाट आई एम आई वर्थी ऑफ. डू वी डू दैट? नो, बिकॉज वी रिस्पेक्ट दैट इनोसेंस. सो रिस्पेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट किसी ने हाँ कुछ कहा, मैंने हाँ बोला. रिस्पेक्ट इज नॉट जस्ट अग्रीइंग. वी माइट नॉट अग्री ऑन मेनी थिंग्स. रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी सेम कि आप ये बोल रहे हो मैं भी ऐसे ही करूं, उसी मेथड से करूं. अगर मैं डिविएट करता हूं तो फिर इट इज डिसरेस्पेक्टिंग. रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी सेम. रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी अग्रीइंग फॉर एवरीथिंग. वी कैन बी डिफरेंट. We can have different opinions, different means and methods, but respecting is to understand we are equal and each one of us is worthy of respect. Yes? Chahe wo bachcha ho, chahe koi chaprasi ho hamare office ke, chahe chai dene wala ho, ya fir table saaf karne wala ho, कोई भी हो, एवरीबडी इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज वो जो टास्क कर रहे हैं उनके अलावा और कोई नहीं कर सकते, और मैं जो टास्क कर रही हूं मेरे अलावा मेरी तरीके से और कोई नहीं कर सकते. व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस यूनिकनेस, व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट ईच वन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले एंड वी आर नॉट हियर टू मेक एवरीबडी रोल सिमिलर, फिर उस नाटक में मजा नहीं आएगा. आएगा उस नाटक में मजा आएगा आपको जिस नाटक में हर एक राम जैसे ही वेशधारी हो, हर एक राम जैसे ही सौम्य तरीके से बात कर रहे हैं और हर एक की आचार विचार एक जैसी हो, फिर आपको क्या लगेगा उस नाटक का? कोई मजा नहीं आएगा, है ना? उसमें विविधता है, उसमें हर एक की अपनी एक छाप है उस नाटक में, इसलिए आपको मजा आ रहा है ना. ऐसे ही इस दुनिया में हम हर एक जो भी है, जो भी जीव है, चाहे वो छोटा सा अर्थवर्म क्यों ना हो, छोटा सा एक तितली ही क्यों ना हो, हर एक की अपनी अपनी पार्ट है, अपनी अपनी रोल है, इसलिए ये संसार इतना सुंदर है. व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम्स. वी नीड नॉट यू नो थिंक अबाउट कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई हमें ये नहीं कर रहा है. बिकॉज व्हेन आई एक्नॉलेज दिस नॉलेज of uniqueness, of worthiness, of equality, I am also acknowledging our ancestors' wisdom, है ना? हमारे पूर्वजों की जो wisdom थी, coexistence, कोई किसी पर हावी नहीं हो रहा था, there was a coexistence, so we are acknowledging our ancestors' wisdom of coexistence, which helped us cultivate the culture of respect and which helped us sustain this culture for so long, for so many centuries. Aaj hum global warming ki baat kar rahe hain, aaj hum baat kar rahe hain ki environment ko respect nahi diya ja raha hai, wo nahi kiya ja raha hai. Why this happened? Because this sustainability was lost. When this is lost, jab respect nahi hai, the same needs become greed. When there is respect, we are sustaining the society. When there is no respect, it is turned into greed. We are disrespecting the nature. We are creating an imbalance and hence there is chaos. Chahe wo nature mein ho, chahe hamare body mein kyun na ho, chahe hamare society mein kyun na ho, ye balance jab chala jata hai, tabhi hum destruction ki or jate hain. When we talk about our own body, we know how to respect an environment. जब हम बोलते हैं कि आप कैसे दिखाएंगे कि आप environment को respect करते हो, तो आपका answer क्या होगा? How do you show your respect to nature? Take care of it. How do you take care of that? What act shows your care towards nature? We travel less. Okay. Or we save the nature. What are the steps we take? Planting more trees, avoiding cutting trees. Okay. Minimize consumption. Use resources wisely. Yes. So we know na ki environment, if I have to take care of environment, if I am taking care of environment, I know that I am showing respect towards Mother Nature. If I am asking to yourself, if you ask yourself, how do you show respect to your body and to your mind? How do you show respect to your body and your mind? Having nutritious food. Okay. And what else? Exercising. And meditation. Okay. allow? Love. Okay. What else? मैं हूं तो दुनिया है, है ना? मैं नहीं हूं तो मेरे लिए दुनिया भी नहीं है. When we speak about self-worth, it is taking care of ourselves, knowing my worth, isn't it? If I do not know my worth, if I do not use the physical and mental, somebody said resources, using resources in a proper way is also showing respect to nature. If I don't use my resources properly, if I mismanage my resources, it is like disrespecting my own body. You agree? कोई भी बीमारी क्यों आ रही है आजकल? मन का, तन का, रिलेशनशिप में. We are not taking care, isn't it? अगर मेरा बॉडी चाहता है कि अभी इतना ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम रोज करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से देखते नहीं, उसका सिग्नल्स हम पकड़ते नहीं. जैसे कि मे बी सम 50-100 ईयर्स बैक अवर ग्रैनीज यूज टू से कि अभी तुम्हें रेस्ट चाहिए, अभी थोड़ी सी सर्दी हो गई, ये गोली खा लो, ठीक हो जाओगे. सो दे हैड दिस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन बॉडी, वॉट इट नीड्स वेन इट हैज टू बी पुट टू रेस्ट, वॉट न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स. बट टूडे वी हैव लॉस्ट दिस कनेक्शन. You agree? Yes? So when I reconnect with my own self, with this understanding, I am able to give respect to others also. So Raj Yoga teaches us the connection between ourselves and the mind, the connection between the mind and the body, and in turn the connection of myself with the whole world. So when I speak about culture of respect in perspective with Raj Yoga, it is that I am understanding my worth, I am understanding my role and the worthiness of that role, and I use this as a platform to contribute for the betterment of the society. In that way, I am respecting myself, my role, and also respecting the people who are around me and contributing for their betterment. So with these words, I've put a full stop to my sharing of this topic on culture of respect. I hope we all together coexist, grow as a society, and bring a golden world, as Chavanji said, golden world into this society in a very faster way, because culture is a basic foundation for the golden age to come. Thank you very much. Om Shanti.
बहन जी के वक्तव्य के लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं, और सिर्फ दो वाक्य आपके सामने समेशन के रूप में. संस्कृत में कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानी परेशाम न समाचरित. हमारे लिए जो प्रतिकूल लगता है वो हम दूसरों के साथ न करें. और दूसरा वाक्य है गांधी जी का, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी अराउंड यू अथवा इन द वर्ल्ड. इन दो शब्दों में एक तो उपाय भी आ गया, बहन जी के वक्तव्य की लगभग सारी बातें इन दो शब्दों में, दो वाक्यों में समाविष्ट हो जाती हैं. आप अपने हाथ में जो आपको दी गई है किताब, प्रोग्राम बुकलेट जो दी गई है, उसमें देखेंगे कि अनेक विषयों को एक करके एक लिए गए हैं, और उन विषयों के बाद में कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए, और इसके बाद के सेशन में हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स की बात आई. अने मैं अपने इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद में समस्याओं के सामने जाऊं, उसके भाग के रूप में ये हमारे बीच में ये सेशन आया है. अब हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर जतिंदर सिंह जी उपस्थित हैं. आप नई दिल्ली स्थित पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शिक्षा कौशल विकास इनोवेशन तथा एचआर विभाग के डायरेक्टर हैं। आप सीएसआर आप जानते होंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन कमिटी तथा स्टार्टअप के सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आप पिछले 2 दशकों से मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में भी कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत संस्थानों की कैपेसिटी निर्माण ट्रेनिंग तथा एकेडमिक्स के कार्य करते रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सर्विसेज के डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग में फैकल्टी के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विद्या नॉलेज पार्क के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं, आईआईएमटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की एमएसएमई के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इवेल्युएशन कमेटी के सदस्य हैं, जो डीएसआईआर की कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से सलाहकार के रूप में काम करती है। ये सेंटर ऑटोनोमस है और आपने अपनी योग्यता के आधार पर आप ताली बजाएंगे 2009 और 10 में स्कॉट चैलेंजर अवार्ड भी प्राप्त किया है। ऐसे हमारे जतिंदर सिंह जी को मैं निमंत्रण देता हूं, आप अपनी बात अपने मन के भाव और अपना अनुभव आप सबके समक्ष पेश करें।
धन्यवाद उपस्थित डेलीगेट्स ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस। सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब इकट्ठे बोलेंगे ओम शांति। अभी ये जो शीर्षक है हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का, द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, और जो रिस्पेक्ट जो वर्ड है जो हमारे भारतवर्ष में जो 5000 वर्षों से जो हमारी कल्चरल वैल्यूज की जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें ऑनेस्टी इंटीग्रिटी कंपैशन और रिस्पेक्ट एक हमारे फाउंडेशन थे हमारी अपब्रिंगिंग के, और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारे ये जो वैल्यू सिस्टम है धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और इसी वजह से इन सब चीजों को जो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, तो इसको दोबारा री इन्फोर्स करने के लिए कि ये जो वैल्यू सिस्टम है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम्स इन अवर लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस अवर नेशन और अवर सेल्फ इधर पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो वी आर ऑल ट्राइंग टू डेलीब्रेट एंड कंटेम्पलेट व्हाट दिस यू नो द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट। Now the problem is that if we see the essence of this particular theme, gradually as we are evolving from civility, we are gradually, you know, going towards incivility. And as we know that right now we are in era when we are not staying with our elders, we are basically more or less in a nuclear family, and in such circumstances when everything is, you know, dependent on machines, We have become the, you know, the slaves of the screens. Either we are always watching the TV screen or mobile screen or our laptop screen or computer screen. So in such circumstances, who will teach us or who will tell us the value system of respect? It's a very, very important point to ponder. And the genesis of this session basically customizes or dovetails our value system, that we need to reinforce this culture of respect from time to time, so that we are able to give the same value systems to our new progenies or to our offspring or the people who are actually, you know, going in the ladder, whether in the organization or in the family as such. And as we talk about the foundation of respect, and we know that it is one of the universal basic values that has been encompassed in ourselves from immemorial time. And when we see that it's a common dictum that whenever we are respecting anybody, we are viewing them as important. And as we are giving importance to any person or we are glorifying any person, we are basically improving the self-esteem, the confidence of that person. And that reflection can be seen. The more respect we give to anybody, and if I am saying the respect, it means the authentic respect, in the same dose or even in more, you know, doses, the respect is given to us, it mirrors back to us also. So respect is always unnaturally or naturally it becomes give and take, because normally it is said that, you know, respect or whatever you can say the value system, they are all deserved, they are not desired. But as we give this particular, you know, value system of respect, immediately we can see that it transforms or it comes back to us in no time. Because we know that one of the most attribute of our value system, as said by our earlier speakers also, that it is a very, very important component for making our individuals high performance. Because this respect, basically it creates a very, very healthy environment in which people feel cared, whether we are talking with our, you know, kids or with our peers, with our subordinates or seniors, or at any level. When we are interacting with them, we are able to make them more engaged, more collaborative, and more enthusiastic, and such people or such all stakeholders become more committed to the service. So this is the essence of the respect. And the point is that when we are inculcating this culture of respect to everybody, we are making people to perform better, they become more innovative, and this display, all of them display great resilience. In fact, in this place itself, the aura in this BK system, Brahma Kumari system, is all about respect. Because as we, you know, move around the campus, everybody greets us with Om Shanti, with a smiling face. And whatever turmoil we are in, whatever stresses we are in, immediately whenever, you know, there is a smiling face with the Om Shanti word, immediately we become normal. We have a pleasant, you know, feeling. So the point is that there are islands of respect in this poverty of our whole country or our whole globe. So we need to create such islands of respect, islands of dignity, honesty, commitment, compassion to all over. And that is one of the, you know, reasons that we are all connected here today in this particular theme, so that we are able to create more and more such islands in the sea of all disrespect and uncompassionate thing and, you know, no integrated things that we are seeing around the world. So I think it is one of the important landmarks in the history of this particular, you know, conference, wherein we are trying to imbibe the culture of respect so that we can spread the same information, same message to the other part of the world. And I always believe that seeing is believing, because normally when I have come to this, you know, place for the first time, isse pehle hamara jo perception tha about the Prajapati Brahma Kumari sect, that was entirely different. But I believe seeing is believing. Once we become a part and parcel of any system, whether directly or indirectly, we actually can create, and because once we carry that aura, the same aura can be, you know, transmitted to the outside world also whenever we are, you know, interacting with different stakeholders. And the point is that this culture of respect starts from, you know, leadership, starts from top. Whether you are the head of the family or head of the organization or head of the government or head of a political system. I remember I was looking at one of the, you know, in the forums where Dr. Abdul Kalam was interacting with many, you know, people. There were many journalists also. So he was just quoting a particular incident that how the culture of respect, how the culture of, you know, trust actually can make institutions big. So he was citing a particular, you know, case study. I'll just quote in his own words whatever he said. Dr. Abdul Kalam said that I was the mission director of SLV-3 in 1979. And as a mission director, it was my role and responsibility to see that everything, all checks and balances are in place. So on the day of this launch of this SLV-3, I went to Sri Harikota launch pad. The counting was started, T-minus 4 minutes, T-minus 1 minute, T-minus 40 seconds. So immediately the computer screen, they showed that there is some problem in the system. There is some leakage in the system, and immediately we need to halt this particular, you know, launch. But since, as per Dr. A.P.J. Abdul Kalam, that since I was the mission director, I took a decision, no, since we have ample fuel in this place, let's go for it. And he ordered that let it go in the orbit as per the schedule. So once this was a 4-stage rocket, the stage 1 went successfully, and in stage 2 this, you know, satellite started orbiting and it dived in Bay of Bengal. So the mission was totally unsuccessful. So he said that I became very stressful. In the evening there was a press meet, and my leader, Professor Satish Dhawan, who was the chairman of ISRO, he called me and said, let's go and meet these even journalists in the press meet. So Dr. A.P.J. Abdul Kalam said, oh, I was shattered that, you know, I'll be made culprit, I'll be made, you know, responsible for this failed mission. So in the press conference, Dr. Satish Dhawan said, although we failed in our mission, but I give utmost respect and I have full trust in my scientists, in my technicians and in my staff. And believe it, I have a very perfect and good team. In the next year, you will see the successful launch of SLV-3. So, what happened? Professor Satish Dhawan took this blame on himself about the mission failure. And after 1 year, on July 18, 1980, the same exercise was done and SLV-3 was launched successfully. So in the evening, Professor Satish Dhawan again called Dr. A.P.J. Abdul Kalam and said, go and conduct the press meet. So it was a big leadership lesson that once there was a failure, Professor Satish Dhawan took it on his own stride. But once the mission was successful, he asked Dr. A.P.J. Abdul Kalam to go and meet the journalists and give them an overview of this launch. So this is the essence of trust and respect that we need to create in our families, in our organizations. And once we are able to create this ecosystem of, you know, this culture of trust, the results can be humongous. It can be unbelievable. Therefore, this sheer example of the successful launch of SLV-3 within 1 year of its, you know, failure, it shows perfect, it's a perfect case study of creating the culture of respect, camaraderie and trust within the organization, and that's how this respect gives more motivation and enthusiasm in all the human beings. In fact, I come from this industry chamber. We interact a lot with industries and we read a lot of, you know, the audit reports, the financial reports of the company. And I've seen, like, normally I have a habit of going to the mission and vision of each every organization. In fact, if you see every organization, they have a mission statement and a vision statement. And I can recall that in the 80s, the mission and vision statements, they were more towards, you know, creating profit, making profits, improving the economy or GDP of the nation. In 2000s, in that decade, it was more about, you know, customer-centric growth, wherein they are giving, you know, service to the customers. And of late, the mission and vision statements, they are more centered around people, creating trust among all the stakeholders. There is no customer, there is no employee, there is no government, there is no regulator, but in fact, creating the culture of trust and respect among all stakeholders. And this is one of the important determinants wherein we can see that gradually the organizations, they're trying to care for the, you know, the people, because we know that nowadays we talk of triple bottom line, people, planet and profit. The people segment, this particular parameter comes on the top, followed by planet, followed by the profit. Therefore, gradually we are seeing, particularly in, you know, European nations and in some of the developed nations, this camaraderie, this trust, this respect is exhibited in the organizations in a larger way, because the type of perks the employees get, the type of different services these employees get in the organizations, they are entirely different. And even our country is also heading in that manner. And if you see the genesis of all the 17 sustainable development goals, it's all about creating, you know, linkages. So the most important 17th SDG says about creating inter-organizational efficacies, building on trust and on, you know, respect. So that is the essence of the SDGs, and we can gradually see that this aura of, because we know that right now there is lack of respect, lack of, you know, trust, lack of honesty and integrity. Basis on that, everything, whatever is designed, it's all, the basis of everything is built upon trust, respect, integrity and honesty. Now, normally I ask myself a question, and even like I ask the same question to my friends also, that what do we want to be? For example, if I've come here, I'm interacting with you, I'm trying to learn some new things from my fellow panelists, from you. So I always try to, you know, understand that what do we all want to be? Now, it's a simple question, and whether we know it or not, we are basically answering it every day. And this is through our actions. Because this one question, what I am, what you want to become, this shows, it defines our personal success, our professional success, And it is more than any other, because how we show up, how we treat people, how we, you know, lift people by respecting them, making them feel valued, appreciated and heard, or how we hold people down by making them feel very small, insulted, disregarded or excluded. And when we choose to be means everything, if we are able to lift the spirit of our people by giving them respect, by trusting them, we are basically indirectly lifting ourselves. We are improving our own, you know, consciousness. We're trying to create the harmony between the mind, the soul and the body, which is the essence of the Raj Yoga also. So, in fact, while studying through all these reports, I also do some studies on, you know, increasing incivility in the organizations. You know, maybe because of some human rights violation or whatever it is. And what we have seen, that this incivility is nothing but it is a bug. It has become contagious. And we have become carriers of it by just being around it. And it is not only confined to the workplace. We can catch this virus of incivility everywhere, at our home, in our schools, in our communities. It affects our emotions, our motivation, our performance, and how we treat others. So it's very important that we need to understand that rather than, again, you know, catching in this trap of incivility, we have to go towards civility. So there is a small case study or a small story which will basically lay a foundation that how you can become civil from this incivility. There was a saint, and this saint was very, very wise. He used to go to different villages, give advice to people that, you know, if you have a problem, this is the answer, this is the solution. And in every village, the popularity of this seer or this saint was increasing. So in one of the villages, there was a mischievous boy. He said that he is getting a lot of, you know, wisdom, he is getting a lot of respect from people. Let me publicly, you know, make him to do something. If he answers something wrong, let him, you know, have a bashing publicly. So he basically comes up with a plan. He said, I will take a sparrow to this saint. I'll put this sparrow at the back of my, you know, in my back. And I ask this saint, I have a sparrow in my hand now. Saint, please tell me whether this sparrow is alive or dead. So if this sparrow is alive, I will twist the neck of this sparrow and I will show him this sparrow is dead. And if the saint says this sparrow is dead, I will show him, no, this sparrow is live. You are wrong. So he goes to the saint in one of the public meetings when all the people were there. When his chance comes, he takes this sparrow, put that sparrow in the back, go to the saint and ask, my dear saint, sir, I want to ask you, I have a sparrow in my hand, whether this sparrow is alive or dead. The saint looks at the face of the boy, penetrates deep in the eyes, and says, son, it is in your hands. So, the essence of this particular theme is that whether we want to progress in life, it is in our hands. We need to be respectful to others. We need to give respect, and then automatically the respect will come to us. Because at the end of the day, I believe that we will be ultimately not be judged by our, you know, bank account or personal excellence or career development. We will be judged by the character of our society and how we respect the poor people or the downtrodden people or, you know, our peers. And that is one we need to understand, the profound things that who we are. Therefore, we need to segregate this word respect, not considering this as a word root respect, one word, but we have to make in two words, suffix, a prefix and suffix. Prefix is re and suffix is spect. Re means again, spect is to visualize. So we need to again visualize that whether we are right or wrong, and that can only happen if we start respecting ourselves, our people, our society, the nation and world as a whole. Thank you very much.
Friends, we had an example written presentation and speech from the distinguished guest. Our culture of respect, किस तरीके से, यानी जैसे देखिए, ये हमारे अंदर ही होता है, सिर्फ उसे हमें रिवील करना होता है. विवेकानंद का एक सुंदर वाक्य है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन. जब परफेक्शन बोलते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट आ ही जाता है, लव आ ही जाता है, और उसका रिविलेशन अगर हम अपने आप से प्रकट करें तो वो बहुत स्वाभाविक है और वो हमारे लिए भी हानिकारक नहीं है. यहाँ पे दो तीन शब्द बहुत चलते हैं. एक है स्वयं प्रिय बनो, दूसरा है परिवार प्रिय बनो, और तीसरा है ये जो स्वयं प्रिय और परिवार प्रिय बनता है ना, वो प्रभु प्रिय अपने आप बन जाता है. तो ये प्रिय बनना माने सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना. ऐसे कुछ कुछ सिद्धांत इनके वक्तव्य में भी देखने को मिले. अब मैं इस सत्र की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी को निमंत्रित करता हूँ. आपने एमए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, पीएचडी तथा एमबीए एचआर किया हुआ है. आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन तथा सोशल साइंसेस की पूर्व डीन रह चुकी हैं. साथ ही साथ नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी की एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज की डायरेक्टर रही हैं. एमिटी की है आईआईएलएम सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस नई दिल्ली की, वो प्रीवीसी हैं, प्रोवीसी हैं. आप प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेस हैं. आपको अपने शोभ निबंध के लिए गोल्ड मेडल मिला हुआ है और पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इथोस एज प्रेडिक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के लिए उन्होंने काम किया है. 24 वर्ष का टेस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का अनुभव है. 35 जितने पेपर्स पब्लिश किए हैं. और खास जो बात जो मुझे बहुत ही अपीलिंग लगी कि आपके विद्यार्थी को गीता की शिक्षाओं तथा सकारात्मक मनोविज्ञान पर किए गए शोध प्रबंध को पीएचडी की डिग्री दी गई है. मंत्रोच्चार का विज्ञान, सत्वगुण तथा विवेक विस्तार आपके रस के विषय रहे हैं. बीइंग ए साइंटिस्ट वो सभी चीजों को साइंटिफिकली देखना चाहती हैं और आपने अपने जीवन की यात्रा का लक्ष्य जो रखा है वो भी बहुत ही जानने जैसा है. जन जन के इनेट पोटेंशियल, प्रोफेशनल एक्सलेंस, हैप्पीनेस तथा सर्वांगी स्वास्थ्य का विकास. तो ऐसी प्रतिभा संपन्न आभा सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं. मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी बात भी रखें और पूरे सेशन को समेशन भी करें. आदरणीय आभा जी.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. धन्यवाद विनय भाई. मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं जो आज इस सत्र में शामिल हुए हैं और खासकर मंच पे जो हैं सभी विद्वान भाई बहन और जो डेलीगेट्स सभा में हैं और इस सभा को सुनने आए हैं. ये बहुत बड़ी बात है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है और सम्मान की बात है. और मैं आज बहुत खुश हूं और ये भी मैं कहना चाहती हूं, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर. आई हैव गॉट अ प्रिविलेज गिवन बाय ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम स्पार्क फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एंड आई थिंक आई वॉज चोजन फॉर इट एंड दोज हु हैव कम हियर दे आर ऑल चोजन फ्रॉम डिवाइन एनर्जी टू कम हियर एंड स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन विच वी हैव whether from science or whether from experience. So today, the question which we are discussing on the very important topic is respect. And I will collect all the points of all the speakers as a chairperson of the session. I'm wondering that I was not knowing the speeches. I only met you yesterday. I think I never met all the speakers. And you will be surprised that how my PPT carries everything which they all have spoken. So this is divine energy. This is God energy. This is because of meditation. I am in meditation practice for more than a decade. So I do everything which God tells me. Sometimes my student asks me, ma'am, what will happen if this is a very difficult question because I have a lot of PhD scholars. I say, nothing to worry. Just close your eyes and just think what is coming to your mind. And they get the answer. So
So this is something very simple, but the way we have complicated our life today, we have forgotten the human essence. Yesterday we were hearing from Sister Geeta about the original nature of human being. And there were 7 characteristics. And one of them was love and respect, which I remember. Today we are talking on respect. And respect is the foundation for each one of us. Even for a child to grow, the example given by Sneha and Chaya, sister, they were talking about that how even a child needs a respect. But when we grow old, we think that there is a generation gap. Why we talk of generation gap? We all are equal. We all are human beings at different level, different age, different stage. So continuing this thought, and then I'll give a summary. Before that, I want to share few things which is very apt to the session of today. And it will give us a scientific view that what all my speakers and on the stage, they have shared their views. Can we have slide? Okay, I think I have. Sorry. I come from academics, so I will remind those who are from academics that there is objective of each education system, what we are doing, we need to remind. But before that, Gandhiji said very important point that aims at complete harmony of thought and word and deeds and purify your thoughts. So complete harmony, because this is the theme of the conference, co-creating harmony through spirituality and science and research. How can we gain this? There is a divide going on in universities and the centers like this, and there are many who are doing this, India and abroad. How can we bring closer and integrated to create a good system in the environment, in the society? Gandhiji was of view, Mahatma Gandhi, he said that where there is harmony, there is growth. And that's where I think if I see the Brahma Kumari, they have initiated this challenge of the world that we are talking on this platform, discussing on this, how we can create harmony. But now question is where we start. I am reminded of Rajendra Prasad, first president of our country, and I have, with my experience of 24 years of experience in education, I have built whatever I have done in any system I was. I created syllabus, I designed syllabus, I designed training programs, I designed intervention, I have designed research programs. I always kept this vision in my mind, that how to objective of education is to create harmony within self and create harmony with others living in the whole world. Can you imagine? First president of India gave this objective of education, and this became that time the education policy it was drafted. Now where we are? The harmony is totally out from our education system. I am coming from education, I am telling you. I am doing my bit, what I can do. But there is an urge to all the educators that we need to think on those lines. We are preparing students for life or only for career. We are doing what? We are only creating a career for them, but not life. Why even great institutions, if we talk, I will not name it, there are great institutions in our country. Why students from those institutions, they commit suicide, they go in depression? Why? So that means education is not giving us enough knowledge to live our life. The science of living, which Brahma Kumari is giving us. The science of living. We have been staying for 3-4 days, we are seeing the living here. Getting up 4 o'clock. All lifestyle disorder will go, I think, if they come here. I think those who pay a lot of money to the psychologists and psychiatrists and doctors, I think all problems will be solved. Do you agree with this? This is what I think the world needs, that how we can give our education system a holistic view of how to live within harmony with ourselves, which I think all my speakers talked on that. Do we have harmony within ourselves? And that is respect. And that is respect. Now, I'll show you some news of science which is very alarming. And yesterday we had heard in Silvamurthy's session the self-belief and also the biology of belief. The one speaker was talking on that. You will get the answer here, what science is talking on, and then I'll connect with respect how it is connected. Can we have the video?
Listen. Hear and see yourself and you see like one person looking back, that is not true. You are made out of 50 trillion cells. So you are a community, not a single person. I will show you the science of actually how the cells work, and you will have more knowledge than most doctors in the world today, because they still believe in the genes. Here is the simple truth. A gene is a blueprint. Are you reading the blueprint, or are you not reading the blueprint? And the gene does not make that decision. The gene is read or not read. And what do you think controls the signal? Perception. Every cell has about 1.4 volts, not too much. 50 trillion cells in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. But your mind is the government for the 50 trillion cells. So if you change your thought and your mind, you can change the biology. And the mind is the primary cause of illness on our planet today. So you are not the victims of your genes, because you can change any of your genes anytime. If you change your perception, you change the reading of your genes. If someone tells you you're going to have a disease and you believe that, then you can create the disease. Perception can rewrite the genetic code. So perception controls life. No two people see the world in the same way. They have different perceptions. And sometimes your perceptions can be right, and sometimes your perceptions can be wrong. Since perception controls biology, and since they can be right or wrong, then it's more accurate to say that belief controls biology. What you believe creates your life, on the inside and on the outside. You're not a victim of your genetics. You are responsible for what unfolds in your life. The placebo effect is when you have a very positive thought that something can heal you, even if it's a sugar pill, but you believe it's the real medicine, then you can heal yourself with that. So the pill didn't heal you, it was the thought that healed you. There is negative thinking, and it's called the nocebo effect. And in the same power that positive thinking can heal you, negative thinking can kill you. So if we were growing up and programmed with stronger beliefs, we would be more powerful than we are now. When you are conscious, you can rewrite the instincts. And when you become conscious, you can rewrite the experiences of your life. So that it is important to recognize that what we are not using enough of in our world today is consciousness.
What is the message? So we are all carrying how many volts of electricity? So you can imagine. So that's why Brahma Kumari, they vibrate with love, respect, because we all have positive energy. Same we can do when we go our homes and college, university or at workplace. That 1700 volts of electricity which we are carrying inside our body, mind, soul, can be converted into respectful behavior. And this Professor Lipton, I think we trying to connect with him for the research. He is doing amazing work, you know. I think I just wanted to just capture his what I want to give message from this video, that we need to respect our body, which I think Sneha's sister said, that we need to respect our body. That's what, this much of electrical energy if you have, and you are not respecting your body, mind, soul, scientifically I'm giving this message to this August gathering, what will happen to our body and mental health and disease? And that's where the problem arises. And the first factor is respect your body, respect your mind, respect your soul consciousness, which even doctors said, the consciousness, you know. So we, and it has been researched, verified and tested. It's something which we can value for our life. So what I'm trying to say, we need first principle of life is respect yourself. Then you can respect us. Quickly I'll just summarize. This was something came to my mind. I think this was before I came to this conference, and this is what all speakers talk about. Understand, important. The three virtue which is a psychologist, I must tell you, for human nature is being important, feeling important, whatever little or big job you are doing. And then respect. We all want to be respected and want to give respect. And that's very true when all the speakers commented that we cannot demand respect. We need to command respect. So this is very important, human nature. And then Sneha's sister also added about understanding. How do we understand? Unless until you understand, you cannot respect. So that's very core of human nature, which is psychologically tested. And I think this was Iru came to mind, which in I think Telugu language, it means each and everyone. So each and everyone, we should have this understanding for being important, respected and understanding. Then three R's, simple. Respect yourself, respect others and responsibility for actions, which Dr. Jitendra Singh highlighted. How it work culture, the civility is very important. And there are many findings of my research which I will not go, but I'll end with this. On civility, which Dr. Jitendra Singh highlighted, that how at workplace and organization we have lost the civility, the human virtues and the love and the respect for our people. And this is a research-based video, TEDx talk for 2 minutes. You can listen to it. And all thoughts which we have shared, it can culminate it in this message of how we need to understand our life of respect, love.
It's a simple question. And whether you know it or not, you're answering it every day through your actions. This one question will define your professional success more than any other. Because how you show up and treat people means everything. Either you lift people up by respecting them, making them feel valued, appreciated, and heard. Or you hold people down by making them feel small, insulted, disregarded, or excluded. And who you choose to be means everything. I study the effects of incivility on people. What is incivility? It's disrespect or rudeness. It includes a lot of different behaviors, from mocking or belittling someone, to teasing people in ways that sting, to telling offensive jokes, to texting in meetings. And what's uncivil to one person may be absolutely fine to another. Take texting while someone's speaking to you. Some of us may find it rude. Others may think it's absolutely civil. So it really depends. It's all in the eyes of the beholder and whether that person felt disrespected. We may not mean to make someone feel that way, but when we do, it has consequences. Over 22 years ago, I vividly recall walking into the stuffy hospital room. It was heartbreaking to see my dad, this strong, athletic, energetic guy, lying in the bed with electrodes strapped to his bare chest. What put him there was work-related stress. For over a decade, he suffered an uncivil boss. And for me, I thought he was just an outlier at that time. But just a couple years later, I witnessed and experienced a lot of incivility in my first job out of college. I spent a year going to work every day and hearing things from coworkers like, "Are you an idiot? That's not how it's done. And if I wanted your opinion, I'd ask. So I did the natural thing. I quit. And I went back to grad school to study the effects of this. And there I met Christine Pearson. And she had a theory that small, uncivil actions can lead to much bigger problems like aggression and violence. We believe that incivility affected performance in the bottom line. So we launched a study, and what we found was eye-opening. We sent a survey to business school alumni working in all different organizations, and we asked them to write a few sentences about one experience where they were treated rudely, disrespectfully, or insensitively, and to answer questions about how they reacted. One person told us about a boss that made insulting statements like, "That's kindergartner's work." And another tore up someone's work in front of the entire team. And what we found is that incivility made people less motivated. 66% cut back work efforts. 80% lost time worrying about what happened. And 12% left their job. And after we published these results, two things happened. One, we got calls from organizations. Cisco read about these numbers, took just a few of these, and estimated conservatively incivility was costing them $12 million a year. The second thing that happened was that we heard from others in our academic field who said, well, people are reporting this, but how can you really show it? Does people's performance really suffer? I was curious about that too. With Amir Erez, I compared those that experienced incivility to those that didn't experience incivility. And what we found is that those that experience incivility do actually function much worse. Okay, you may say, this makes sense. After all, it's natural that their performance suffers. But what about if you're not the one who experiences it? What if you just see or hear it? You're a witness. We wondered if it affected witnesses too. So we conducted studies where five participants would witness an experimenter act rudely to someone who arrived late to the study. The experimenter said, "What is it with you? You arrive late, you're irresponsible, look at you. How do you expect to hold a job in the real world?" And in another study in a small group, we tested the effects of a peer insulting a group member. Now what we found was really interesting. Because witnesses' performance decreased too, and not just marginally, quite significantly. Incivility is a bug. It's contagious, and we become carriers of it just by being around it. And this isn't confined to the workplace. We can catch this virus anywhere, at home, online, in schools, and in our communities. It affects our emotions, our motivation, our performance, and how we treat others. It even affects our attention and can take some of our brain power. And this happens not only if we experience incivility or we witness it. It can happen even if we just see or read rude words. Let me give you an example of what I mean. To test this, we gave people combinations of words to use to make a sentence. But we were very sneaky. Half the participants got a list with 15 words used to trigger rudeness: impolitely, interrupt, obnoxious, bother. Half the participants received a list of words with none of these rude triggers. And what we found was really surprising, because the people who got the rude words were 5 times more likely to miss information right in front of them on the computer screen. And as we continued this research, what we found is that those that read the rude words took longer to make decisions, to record their decisions, and they made significantly more errors. This can be a big deal, especially when it comes to life and death situations. Steve, a physician, told me about a doctor that he worked with who was never very respectful, especially to junior staff and nurses. But Steve told me about this one particular interaction where this doctor shouted at a medical team. Right after the interaction, the team gave the wrong dosage of medication to their patient. Steve said the information was right there on the chart, but somehow everyone on the team missed it. He said they lacked the attention or awareness to take it into account. Simple mistake, right? Well, that patient died. Researchers in Israel have actually shown that medical teams exposed to rudeness perform worse not only in all their diagnostics, but in all the procedures they did. This was mainly because the teams exposed to rudeness didn't share information as readily, and they stopped seeking help from their teammates. And I see this not only in medicine, but in all industries. So if incivility has such a huge cost, why do we still see so much of it? I was curious, so we surveyed people about this too. The number one reason is stress. People feel overwhelmed. The other reason that people are not more civil is because they're skeptical and even concerned about being civil or appearing nice. They believe they'll appear less leader-like. They wonder, do nice guys finish last? Or in other words, do jerks get ahead? It's easy to think so, especially when we see a few prominent examples that dominate the conversation. Well, it turns out in the long run, they don't. There's really rich research on this by Morgan McCall and Michael Lombardo when they were at the set, is that when we have more civil environments, we're more productive, creative, helpful, happy, and healthy. We can do better. Each one of us can be more mindful and can take actions to lift others up around us, at work, at home, online, in schools, and in our communities. In every interaction, think, who do you want to be? Let's put an end to the incivility bug and start spreading civility. After all, it pays. Thank you.
So we have choice to be civil and revisit our tradition of respect culture, which all speakers have stressed emphasis upon, that India was known for the culture, tradition of respect and love. And it is in our blood cells, it is in the air of our land in which we are residing. But why we have forgotten, I don't know. We go to different countries, we see the culture of respect. And we same individual, we become different. So it is urgent call and clarion call for all of us who are here today. Take this clarion call of respect and bring to self, family, society, and to the world. With this, world will be beautiful and livable and lovable for all, for which Brahma Kumari's initiative is praiseworthy. I am revered for this that I am here, and I thank VK Vinay Bhai that you gave very good example of flower. You be a flower. Flower is good for themselves, but flower also give flower to others in the sense of beauty and fragrance and the aroma, and the environment becomes, the ecosystem becomes very good. So thank you all for listening to me and understanding my point of scientific point of view on respect. Thank you all. God bless you. Om Shanti.
Om Shanti. Summarizing and sharing, these two dimensions were taken care of. And in one sentence I can say the message was yatha pinde tatha brahmande. As you are, the world is like that. Sirs, distinguished audience, please allow me a little overshoot of time and let us have Durgesh Ben for contemplation session. I request Durgesh Ben to come forward. She has been in this knowledge since 1988, Masters in Personnel Management, graduate in Science and Law and Management Diploma, MSc in Value Education, taking care of Bhubaneswar Center of Brahma Kumaris, and she has been awarded with many, many, many citations. Bhubaneswar Nagar Bandhu Rotary during 2008-09 and 14-15 and many other. And she knows Uriya, Hindi, Bengali and English. Adarniya Durgeshwar.
Om Shanti. Respected Dais and my dear respected brothers and sisters. Are all of you happy? Why? Because we are all in a very respectful and in a very loving surrounding, isn't it? The day we have filled our registration forms, we had come here with the identity that we can tell that is the role identity, isn't it? You were asked your qualification, your position, your occupation and lot others. But since last 2 days, we are in a journey where we have explored our real identity, isn't it? We have come to know, we have understood, we have got the truth that I am a soul. That is my soul identity. And let me try to go in a journey. We all will go in a journey. And last day we had heard that our self-talk, the suggestions, the commentaries, whatever I will give, that will be the points to talk within the self, and that will create our beliefs, isn't it? Because we heard yesterday, self-talk has impact on our belief, and that again, the beliefs also have an impact on our self-talk. So, let us go in a journey. I will request all of you to straighten your backbone. And have a deep breathing. Gehri saans lete hue, is vatavaran mein, jo positive, powerful, and pyar ki prakampan hai, usko andar lete chale, aur exhale kar sakte hain, apne andar jo bhi kamzoriyan hain. Phir se gehri saans lete hue, is vatavaran ki पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करें श्वासों को स्वाभाविक तरीके से लेते हुए मेरी शब्दों के साथ आगे बढ़ने की प्रयास करें अपने से पूछें मैं कौन हूँ इन कानों से सुनने वाली आंखों से देखने वाली कौन हूं मैं कौन हूं मैं जो मन द्वारा सोच सकती हूं हमारी संस्कृति के बारे में समझ सकती हूँ स्वयं को सजेस्ट कीजिए इस शरीर को चलाने वाली इस शरीर के मस्तक में मस्तिष्क में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। I am a point of light. A point of energy. Anubhav kare. सेल्फ अफर्म करें, मैं शुद्ध हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, स्वच्छ हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी स्वधर्म है। मस्तक में जगमगाती हुई मैं आत्मा मुझसे शांति की प्रकंपन फैल रही है। I am an embodiment of peace. शांति मेरी स्वाभाविक गुण है। सो आई लव माई सेल्फ। मुझसे स्वाभाविक प्रेम की धारा बह रही है। मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मेरी स्वाभिमान से मुझे समझ में आ गई मेरा कौन है। शांति का सागर परमात्मा की मैं संतान हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। प्यार के सागर का प्यार में पलने वाली हूँ। मैं खुद की वास्तविकता को पहचान गए हूँ। अनुभव करे मुझसे स्वाभाविक शांति प्यार पवित्रता जो मेरी ओरिजिनलिटी है जो मेरी पैटर्नल प्रॉपर्टी है उन संपत्तियों से मैं भरपूर हूँ। मैं खुद को सम्मान कर रही हूँ। और जो मेरे आसपास है सभी यही निजी परिचय के साथ सम्माननीय है। तो सबको मैं सम्मान कर रही हूँ। ऐसी प्यारा और सम्माननीय मेरी एटीट्यूड से मैं परमात्मा की आशीर्वाद को प्राप्त कर रही हूँ। इस सम्मान के साथ स्वयं को सम्मान देते रहें, सबको सम्मान की दृष्टि से देखने की सोचने की उस भावना को कायम रखने की धारणा के साथ इस सृष्टि को सारा संसार को सम्माननीय बनाने में मैं निमित्त बन जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। ऐसे हर सेशन के बाद ऐसा लगता है कि हम भूल कर कहीं पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय का तकाजा है। मैं आप सबसे एक एक्टिविटी चाहूंगा, मैं यहां से बोलूंगा उसका धन्यवाद, उस पिता परमात्मा का, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फैसिलिटेटर्स और सुविधा देने वाले सभी का, और स्वयं का। ओम शांति। अब मैं बहनों से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे मेहमानों का मेमेंटो से सम्मान करें। आपको मैं दिल से क्षमायाचना के साथ शुक्रिया कहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य जो बीच के ब्रेक का समय था उसका बलिदान किया है। अगला सेशन 15 मिनट के बाद शुरू होगा, प्लीज आप अवश्य उसमें समय पर पधार कर अपना सहयोग दें। आदरणीय आभा बेन, हमारे मुख्य वक्ता स्नेहा बेन, दुर्गेश बेन वगैरह सबका दिल से शुक्रिया। अगले सेशन के निमंत्रण के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ओम शांति।